संबंध जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। प्राय साधक का ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा, अतः कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त अर्थात विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तुझे बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता है, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानी, और स्वयं परमात्मा का है, ममई वांशो जीवलोके। अतः शरीरादि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना अर्पण चाहिए, जो कि वास्तव में भगवान का ही है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का ये तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की ही होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व माने उत्पत्तिशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। द्व्यक्षरस्तु भवेन मृत्युस्त्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। दो अक्षर का मम यह मेरा ऐसा भाव मृत्यु है, और तीन अक्षरों का न मम ये मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत माने सनातन ब्रह्म है। अर्पण संबंधी विशेष बात, भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य इन पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य के करण माने इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण शरीर ये उपकरण हैं, कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया जो कभी इसके थे नहीं और होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध, अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे, चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के, अतः मैं भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था तो भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे ये वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी से माने यहाँ तक कि उकता करके भी अर्पण किया जाए तो ताप है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण उपकरण कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही है। साधक से प्राय ये भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण और स्वयं भी भगवान के ही है इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण उपकरण क्रिया और स्वयं अपने आप को सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना यह वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाते हैं उससे कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुणा मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से अंतःकरण में वस्तु का महत्व बढ़ता है और उसके महत्व बढ़ने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं प्रत्युत बालक का देने का जो भाव है उसे देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर और शरीरी भगवान के ही है, अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेष बात। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना योग्यता शक्ति शरीर इंद्रियां मन प्राण बुद्धि आदि जो मिले हुए दिखते हैं वे पहले हमारे पास नहीं थे और बाद में सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आवे तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवश मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं, स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहां ये शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। उसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए। पांचवें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो वास्तविक उद्देश्य को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण कहा है। कृपणा फल हेतव है। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी कहा है। फलम त्यक्त्वा मनीषिण है। सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा कहना मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार मान जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद कामना ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह जाता है। उदाहरणार्थ हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि ये मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है। जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष रहती है, इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर और प्राप्त वस्तु में ममता मत कर तथा नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि ममता, कामना और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीरादि पदार्थों की कामना, ममता और संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती थी वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती थी वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह में अहम भाव मानता है वही विदेह होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यही आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम निर्मम तथा निस्संताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए, उसके परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर है, माने संताप है। राग द्वेष हर्ष शोक कामक क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब ज्वर है, अतः उनसे रहित होना ही विगत ज्वर है पद का तात्पर्य है। विशेष बात, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते, इसीलिए सामग्री जो भी है और जैसी भी है वही और वैसी भगवान के अर्पण कर देनी चाहिए। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु बताया गया है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। कारण की कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता चलता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बतलाया गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है, परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियां माने कामना ममता आदि की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वो कर्म करता है। इसीलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निस्संताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर माने क्रूर कर्म भी समभाव से किया जाता है तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता हो। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायण होता है त्यों ही त्यों कामना ममता आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटने लगते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर चाहते हैं, इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। परिशिष्ट भाव। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इसका ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया और पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, अर्थात भगवान के और भगवान के लिए। कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के अंतर्गत है। गीता 7वां अध्याय 29वां 30वां श्लोक। उस समय भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। उस समग्र भगवान के लिए ही यह मई पद आया है। इस श्लोक में मई सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य पदों में भक्ति योग की और अध्यात्म चेतसा सन्यस्य इस पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, इन पदों से कर्मयोग की बात आई है।